नमस्कार भारत, तारीख 13 फरवरी, दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। अखिलेश यादव की चाहत पिता मुलायम उनके लिए करें प्रचार।
मैं तो चाहता हूं कि नेताजी कैंपेन में चलें, अंतोगतवत तो उन्हें ही करना है और किन विधानसभाओं में जाएंगे वो भी वही तय करेंगे, उनका ही आशीर्वाद रहा तभी यहाँ तक पहुँचे हैं।
उत्तराखंड में भी यूपी की तरह ही नहीं है मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बीजेपी के पास।
अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कोई विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम देखूंगा, कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तभी तो संवारेंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे।
सुनिएगा पुराने जमाने की गुजरी यादों को कैसे याद करते हैं बुसतुल्लाह खां। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक ही चरण में पूरे राज्य में मतदान है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों ही जगह चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी से हुई बातचीत में कहा है कि वे चाहते हैं कि पिता मुलायम सिंह उनके लिए चुनाव प्रचार करें। अखिलेश यादव ने ये बात इस सवाल के जवाब में कही कि मुलायम ने चाचा शिवपाल यादव के चुनाव क्षेत्र में जाकर प्रचार किया है। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ सलाहकार ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका घुसने पर पाबंदी लगाने संबंधी ट्रंप के फैसले को रद्द करने के आदेश को सही ठहराने पर अमरीकी संघीय अपील अदालत की आलोचना की है। स्टीफन मिलर ने अमरीकी मीडिया से कहा कि जज ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। अपीलीय अदालत ने गुरुवार को प्रतिबंध को फिर से लागू करने की ट्रंप की कोशिश को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने कहा है कि वे मामले को अदालत में जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ ही सोमवार तक एक नए कार्यकारी आदेश जारी करने पर भी विचार कर रहे हैं। स्टीफन मिलर ने कहा,
The bottom line is that we are pursuing every single possible action to keep our country safe from terrorism.
And I also हम अपने देश को आतंकवाद से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि इस बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी हैं कि सरकार के सभी अंग बराबर होते हैं। यही सच है कि वे बराबर होते हैं। न्यायिक श्रेष्ठता जैसी कोई चीज नहीं होती। दोनों जगहों, अपील कोर्ट और जिला स्तर पर जजों ने जो किया है वो अमरीका राष्ट्रपति की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेने जैसा है। स्टीफन मिलर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आप्रवासन नीतियों और अमरीका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का खर्च मैक्सिको से लेने के उनके वादे के विरोध में मैक्सिको के 12 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी मैक्सिको सिटी में हजारों लोगों ने हाथों में लाल, सफ़ेद और हरे रंग का राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और मैक्सिको के पक्ष में नारे लगाए। इन तख्तियों में ट्रंप पर नस्लवादी और मैक्सिको विरोधी बयानबाजी के आरोप लगाए गए। कई विश्वविद्यालय, व्यापार संगठन और सामाजिक संगठन इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस मार्च के जरिए वे ट्रंप को बता देना चाहते हैं कि मैक्सिको उनकी नीतियों के खिलाफ एकजुट है। साथ ही अमेरिका में रह रहे मैक्सिको के नागरिकों को एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं जिन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिए जाने का डर सता रहा है। रोमानिया की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी फिर से जमा हो गए हैं और 2 महीने पुरानी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन राजधानी बुचारेस्ट में हो रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने रोमानिया के झंडे के नीले, पीले और लाल रंगों की तरह का बड़ा आकार बनाया है। ताज़ा विरोध प्रदर्शन विदेश मंत्री टेडोर मेलेक्शकानू के उस बयान के विरोध में है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार संसद में विश्वास प्रस्ताव हारने तक इस्तीफा नहीं देगी। 2 हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने सरकार को उस विवादास्पद फैसले को रद्द करने पर मजबूर कर दिया जिससे भ्रष्टाचार निरोधी अभियोजकों की शक्तियां कमजोर हो सकती थीं। पूर्व विदेश मंत्री फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर जर्मनी के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 1260 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में स्टाइनमायर को 931 वोट मिले। स्टाइनमायर वर्तमान राष्ट्रपति योआकिम गाउको की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तर कोरिया ने जापानी सागर में अपने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को सफल कहा है। उसने कहा है कि ये मिसाइल परीक्षण परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। बीबीसी समाचार।
सुप्रभात, बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 15 फरवरी को मतदान होना है। राज्य के 11 जिलों की 67 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी तरह उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए भी आज प्रचार का आखिरी दिन है। पहले उत्तर प्रदेश, जहां सपा, कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी सभी पार्टियां दम लगाकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। पार्टी के दिग्गज प्रचार में उतर पड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के प्रचार में पिता मुलायम नहीं उतरे हैं। हालांकि अपने भाई शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर सीट पर वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं कि पिता और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव उनके लिए प्रचार करेंगे या नहीं। पार्टी की अंदरूनी कलह के कुछ उलझे और कुछ सुलझे सवालों के साथ बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव मिले अखिलेश यादव से।
पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो फैमिली में जो चीजें रही जो बाहर निकल कर आई, क्या सोचता होगा वोटर?
मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं। स्वाभाविक है, उन्होंने चीजें देखी किस तरह घटनाक्रम हुआ है और क्या क्या परिवार में या पॉलिटिकल पार्टी में जो घटनाएं हुई हैं। मैं समझता हूँ उन घटनाओं से अब जनता दूर है, वो ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बने। तो पुरानी बातें मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं 50 विधानसभाओं से ज़्यादा गया हूँ। कहीं भी किसी ने मुझसे परिवार के सवाल नहीं पूछे, परिवार वाले मुद्दे या जो घटनाक्रम हुआ है वो शायद अब जनता नहीं जानना चाहती।
कभी कभी ड्राइंग रूम में बैठते होंगे थक हार के, वीकेंड पे, संडे को कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए के, तो क्या कभी हल्का सा अफसोस होता है कि शायद ये ना होता तो और बेहतर हो सकता था?
मैं ये कह सकता हूँ कि समय और परिस्थितियों का किसी के बस में नहीं है। भाग्य पे तो किसी का बस नहीं है, हाँ कर्म पे जरूर बस है कि कर्म आप कर सकते हो, काम आप कर सकते हो। तो जो होना था शायद वो निश्चित समय वही था जब हुआ है।
पिताजी कैंपेन पर उतरेंगे, उसको लेकर उत्साह है क्या? आपके लिए भी उतरेंगे क्या?
मैं तो चाहता हूँ कि नेताजी कैंपेन में चलें। अंतोगत वत है तो उन्हें ही करना है जी। और किन विधानसभाओं में जाएंगे वो भी वही तय करेंगे जी। उनका ही आशीर्वाद रहा तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार अगर बनेगी तो सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छा तो नेताजी को ही लगने वाला है जी।
पिछले दो एक दिनों में एक कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो मुस्लिम तमाम बड़े नेता हैं जिसमें शाही इमाम से लेकर और लखनऊ में कुछ मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी आपके साथ ना जुड़ने का एक तरह से आह्वान किया जो पहले नहीं होता था। एक तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो आपकी एक गढ़ थे, आपका एक वोट बैंक।
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि अंत आप अगर देखेंगे, अगर कोई अपील कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए अपील कर रहा है। तमाम लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें आप। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर वो लोग जो सेकुलर लोग हैं, खासकर वो लोग जो बीजेपी की ताकत को रोकना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि पिछली लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें आई थी और उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर हमारे मुसलमान भाई और अल्पसंख्यक ये जानते हैं कि बीजेपी और बीएसपी ने कई बार भाई बहन वाला रक्षाबंधन मनाया है, 3 मिलकर सरकार बनाई है। इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी की बातों पे उत्तर प्रदेश के खासकर वोटरों को कोई भरोसा नहीं है।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इस बार जो आपका गठबंधन हुआ है कांग्रेस से राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी या अखिलेश यादव एक साथ मंच पर दिखते हैं आप रथों पर, रैली पर, उससे लोग कहते हैं कि शायद कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को उतना नहीं होगा, क्या ये सही है?
देखिए सवाल ये नहीं है कि किसको फायदा ज़्यादा होगा किसको कम है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी की सरकार बनेगी और कांग्रेस के गठबंधन की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। बड़ी बात तो यही है, किसको ज़्यादा मिला किसको कम मिला ये सवाल नहीं है। और फिर अगर किसी दल को साथ ही लिया जा रहा है तो कम से कम समाजवादी लोग खुले दिल से उन्हें साथ ले रहे हैं।
यूथ आपका फोटे रहा है, आप खुद कहते हैं कि और आपकी पार्टी में लोग कहते हैं कि यूथ की अपील थी 2012 में जिन्होंने अखिलेश यादव को ओवरवेलमिंगली चीफ मिनिस्टर बनाया। इस इलेक्शन में कितना फोकस है आपका यूथ पर, क्योंकि बहुत से और फैक्टर्स हैं कास्ट के, रीजनल पॉलिटिक्स के, तो क्या यूथ फिर से?
मैं समझता हूँ जो युवा है वो आगे बढ़ना चाहता है, कम से कम नौकरी रोजगार से आगे बढ़ना चाहता है, उसका भी कुछ ना कुछ अपना सपना है। कम से कम वो ये महसूस करता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेता नए हैं, युवा नेता हैं, नई सोच के काम किए हैं। मैंने लैपटॉप बांटा, आखिरकार नौजवानों को फ़ायदा मिला। और 18 लाख लैपटॉप देने का मतलब ये है कि 18 लाख कहानियां हैं।
क्या वो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स नहीं है जैसे
मैं समझता हूँ? ये हो सकता है लोग कहें, लेकिन इंटरनेट कंप्यूटर एक बड़ी चीज़ है आज के दिनों में, और अगर लैपटॉप मिल जाए, इंडिविजुअल लैपटॉप मिल जाए, तो उससे एक युवा का नहीं बल्कि उसके परिवार को भी लाभ मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए अखिलेश यादव जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 73 सीटों पर हुए मतदान को लेकर हर पार्टी अपने पक्ष में नतीजे आने के दावे कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दावा किया कि उनकी पार्टी पहले चरण में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पहले चरण में स्थितियां अपने पक्ष में होने का दावा किया। किस दल का है कितना दावा, एक रिपोर्ट के साथ है वात्सल्य राय।
पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के दावे के साथ दूसरे चरण में बढ़त बनाने का मंसूबा। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में विरोधी को मात देने की जुगत में लगी हर पार्टी के नेता कल इसी कोशिश में रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कल लखनऊ में मीडिया से मुखातिब हुए और दावा किया कि पहले दो चरणों की 140 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 90 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है।
कल से लेकर आज दोपहर तक फीडबैक लेने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 50 से ज्यादा सीटें लेकर सबसे आगे रहेगी। प्रथम चरण के ट्रेंड के आधार पर मैं मानता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण में 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी।
ऐसा ही दावा सीतापुर की रैली में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी किया। मायावती ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार और प्रदेश की अखिलेश सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर बहुमत हासिल करेगी।
अब ये पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में अपनी हर प्रकार की तैयारी के साथ बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाने वाले हैं।
दावों का डंका बजाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी पीछे नहीं है। दिग्गजों के बीच जारी इस जुबानी जंग के बीच आज शाम उन 67 सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा जहां 15 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। तब तक हर पार्टी वोटरों को अपने वादों और दावों का यकीन दिलाने की पुरजोर कोशिश में है
हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दावे कर रही है, अलग अलग तरह के दावे कर रही है, और हर कोई ये कह रहा है कि वो बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले हैं। कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं अपने सहयोगी बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद को, जो कि इन चुनावों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, तमाम इलाकों में घूम रहे हैं। जुबैर साहब, ये जो अलग अलग दावे आ रहे हैं और आज दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो भी थम जाएगा, किस तरह की बयार, और लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न दिख रहा है, टक्कर दिख रही है?
मोहनलाल, अब तक पिछले एक हफ्ते में जिन जिन इलाकों का मैंने दौरा किया है वो अब 15 तारीख को वहाँ चुनाव होने वाला है, जैसे कि रामपुर, मुरादाबाद वगैरह, तो मुझे ये नजर आया कि तीन तरफा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, तीनों में कड़ा मुकाबला होगा। और मुद्दों का जहां तक सवाल है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, नोटबंदी वगैरह भी कुछ लोगों को उसका असर जरूर हुआ है। मेरा ये मानना है कि मैं तो गांव-गांव में गया हूं अंदर अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुद्दे सब अपनी अपनी जगह पे धरे रह जाएंगे। असल मुद्दा जो है वो जात पात का है और कॉम्युनल लाइन पे वोटिंग होगी। तो अगर फर्ज कीजिए कि जो मायावती ने दावा किया कि उनको बहुत सारे वोट मिल रहे हैं, तो जो उनका अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और अगर उनको मुसलमान अच्छी संख्या में वोट देते हैं तो उनके दावे पूरे भी हो सकते, मतलब उनको बहुमत मिल सकता है इन सब इलाकों में, लेकिन कड़ा मुकाबला है, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या होगा।
जुबैर, जो समाजवादी पार्टी के अंदर उठापटक मची थी और अभी हमने कार्यक्रम में अखिलेश यादव का साक्षात्कार ब्रॉडकास्ट किया, क्या हकीकत में जमीन पर चाचा भतीजे पिता पुत्र को लेकर मतदाताओं में कुछ भ्रम की स्थिति है या सब कुछ लगता है ठीक ठाक हो गया?
देखिए, कन्फ्यूजन तो है। मैं इस वक्त इटावा में हूँ और उनका ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और कल मैंने उनके चाचा से बात की थी।
हाँ
जी, तो उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं से बात की, जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि कार्यकर्ता दो भाग में बटे हुए हैं, कुछ अखिलेश का साथ दे रहे हैं तो कुछ उनके पिता का और उनके चाचा का साथ दे रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन वोटरों में भी है, ये मैंने खुद महसूस किया और शायद इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है।
जी जी जुबैर अहमद, सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं। आज यहाँ पर 70 सीटें हैं, आज यहाँ पर भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। नतीजे जैसा कि हम जानते हैं 11 मार्च को आएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि बाजी किसके हाथ लगी, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से किसी एक का पूर्ण बहुमत या अन्य किसी दल या निर्दलीय की बैसाखी वाली सरकार, सारा सवाल लोगों के लिए है, लोगों के सामने है। कांग्रेस के लिए स्पष्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए हरीश रावत का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लॉटरी किसकी लगेगी कहना मुश्किल है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
मशहूर फिल्म बाहुबली से कुछ दृश्य और गाने की कुछ लाइनें लेकर किरदारों के चेहरे बदलकर इन दिनों एक वीडियो यूट्यूब में डाला गया है, जिसमें बाहुबली बने हैं हरीश रावत, जिन्हें हरदा कहा गया है यानी हरीश भाई, और उनके कंधों पर उत्तराखंड के नक्शे का ढांचा रखा दिखाया गया है। आशय यही है कि यही अब बेड़ा पार करेंगे। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व कांग्रेस नेता विजय बहुगुणा और अन्य बागियों को वास्तविक रूप में भी हरीश हर जनसभा, हर रैली, हर जवाब में कोस रहे हैं।
यदि आज ये 10 गठबंधन जीत गए तो फिर आगे आने वाले सत्र के अंदर
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी हरीश रावत पर पलटवार करते हैं। कांग्रेस से इस दौरान वे कई प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को बीजेपी में लाने में सफल हुए हैं। बीजेपी में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उनका बेटा मैदान में है। क्या बहुगुणा अपना बदला पूरा कर यानी हरीश रावत को हरा कर राजनीति से संन्यास की राह चले जाएंगे? जी नहीं, उनके तेवरों से साफ है कि हरीश से ज्यादा मुश्किल वो बीजेपी में खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी फिर से सीएम बनने की हसरत बाकी है।
जनता जान चुकी है हरीश रावत जी के क्या जो दो चेहरे हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, वो जनता देख चुकी है। और कांग्रेस से तो चुनाव हो ही नहीं रहा, ये तो चुनाव हरीश कांग्रेस से हो रहा है। और हरीश रावत ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, कुर्सी बचाने के लिए ऐसे कई समझौते किए जिससे प्रदेश का हित हुआ है।
कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के मामले पर बीजेपी की परेशानी को लेकर उसकी खिल्ली भी उड़ाते रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है, लिहाजा मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं कि जैसे वे ही मुख्यमंत्री हों। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय,
क्या है वो अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कोई विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम देखूंगा, कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तभी तो सवारेंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैंने कहा देश के लोगों का इनसे पल्ला छूट जाएगा कम से कम जो है।
उधर बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब फिलहाल ना में ही है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने कहा,
वो विधायकों में से होगा, विधायकों की चर्चा के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ सलाह मशवरा करके नेतृत्व तय हो, और अभी तक नेतृत्व तय नहीं हुआ है।
बीजेपी में इस समय अघोषित तौर पर सीएम पद के लिए जो दावेदार हैं, उनमें सबसे ऊपर सतपाल महाराज का नाम है, लेकिन तीनों पूर्व मुख्यमंत्री और आज के सांसद यानी बीसी खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक भी सूची में बने हुए हैं। इनके अलावा अजय भट्ट और अनिल बलूनी जैसे डार्क हॉर्स भी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में हरीश रावत पहले से घोषित तो हैं ही, लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल कुर्सी पर रह नहीं पाया। 8-8 बार मुख्यमंत्री पद पर बदलाव इन 16 वर्षों में ऐसे ही नहीं होता रहा। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
चुनावों का हमने जिक्र किया कि किस तरह से राजनीतिक घमासान उठापटक चल रही है और किस तरह से दावे कर रहे हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। अखबारों की समीक्षा के लिए अमर शर्मा मौजूद है। अमर शर्मा, अखबार पढ़ चुके हैं, क्या कह रहे हैं? टेबल पर अखबार फैले हुए हैं
जी, देख रहे हैं आप। तमाम अखबारों ने अलग अलग खबरों को हेडलाइन बनाया है आज। आप इंडियन एक्सप्रेस ने पहली खबर आतंकी मुठभेड़ जो कल कश्मीर में हुई, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में, इसको लिया। लेकिन इसके बगल में जैसे आप चुनाव की खबरें बता रहे थे, राजनाथ सिंह की ये तस्वीर है और उन्होंने अपनी जो सहारनपुर में रैली की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और राष्ट्रीय गर्व को मुद्दा बनाया है। ये तमाम अखबारों में आर अश्विन की खबर को तस्वीर के साथ छापी गई है। देखिए पहले पन्ने पर
अश्विन ने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ,
वो आप दैनिक जागरण की पढ़ रहे हैं हेडलाइन, और यहाँ पर हिंदुस्तान में है ये, अश्विन सबसे तेज 250 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
और अपने श्रोताओं को यहाँ पर बता दें कि ब्लाइंड T20 क्रिकेट की बात हो रही है कि पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना है, इस खबर का जिक्र हो रही है।
और भास्कर ने इस खबर पर बड़ी दिलचस्प हेडलाइन लगाई है कि हम आंखें बंद करके भी पाकिस्तान को हरा देते हैं।
क्या बात है।
एक और खबर है कि सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, उनकी जो नोबेल की जो रेप्लिका प्रतिकृति वो बरामद कर ली है दिल्ली पुलिस ने, और साथ ही कुछ कीमती सामान चुराए गए थे वो भी। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि पूरे जो देश भर के जो मरीज दिल्ली आते हैं एम्स में अपना इलाज कराने के लिए, इसमें इलाज महंगा हो सकता है क्योंकि संस्थान की तरफ से आम बजट में जो 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई है, लेकिन वहाँ जाँच कराने के लिए लिए जाने वाले शुल्कों और संस्थान की आर्थिक ज़रूरतों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय ने उन्हें यूज़र चार्ज बढ़ाने की सलाह दी है। हालांकि 1996 के बाद से यूज़र चार्ज बढ़ा नहीं है, और इसे पहले भी 2015 में भी इसे खारिज किया, वहाँ की फैकल्टी और सारे लोगों ने इसे खारिज किया था। एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 2000 की जो नकली नोट है वो पाकिस्तान में 2 महीने हुए अभी नोटबंदी के, इसके बाद में पाकिस्तान
में नकली नोट आ गए हैं
और बांग्लादेश की सीमा से ये भारत में घुस रहे हैं, और इसमें 17 जो सुरक्षा मानक हैं उनमें से 11 को इसमें सफलतापूर्वक ले लिया गया।
तो सावधान हो जाएं कि भाई नकली नोट जो है।
और महत्वपूर्ण खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, उसमें ये जो उमा भारती का बयान है इसके संपादकीय पन्ने पर इन्होंने लिखा है कि उमा भारती का जो बयान है, जो ने पिछले हफ्ते आगरा में इलेक्शन रैली में कहा है, चुनावी रैली में, कि बलात्कार के जो आरोपी हैं उनको यातना देने के तरीकों में मिर्ची उन पर रगड़ देनी चाहिए, इस भयावह डराने वाली टिप्पणियों पर कि भर्त्सना की जानी चाहिए, इस पर एक लंबा आर्टिकल है और हमारे BBC के पन्ने पर भी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमर। और यहाँ पर कार्यक्रम में हम आगे आपको वुसत उल्लाह खां की डायरी सुनाने वाले हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
क्या आप कभी बीते कल में झांक कर देखते हैं? जो आज का वर्तमान है वो कल अतीत बन जाएगा, तो कैसा था गुजरा जमाना और कहां गई वो बातें, इसी पर सुनिए पाकिस्तान से वुसतुल्लाह खां की डायरी।
मेरी पीढ़ी चिट्ठी लिखती थी, चिट्ठी भेजती थी, इश्क भी चिट्ठी से शुरू होता और ख़त्म भी चिट्ठी पे। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, ये सुन के आँखें तर होना अभी कल ही की तो बात है। डाक बाबू जैसे हमारे परिवार का हिस्सा था, और फिर वो टेलीग्राफ ऑफिस का तार बाबू, हर छोटे शहर और कस्बे का पत्रकार सब पे धौंस जमाता था, मगर तार बाबू को आते जाते सलाम करना नहीं भूलता था। रोज़ अखबार के दफ्तर को गांव की खबर भी तो यही तार बाबू टक टक टटक भेजता था। महबूबा चूंकि दुनिया की नज़रों में आए बगैर तार घर तक नहीं जा सकती थी, इसलिए चिट्ठी में ही लिख भेजती थी, इस चिट्ठी को तार समझना। फिर भी सब ये दुआ करते थे कि ऊपर वाला किसी के घर तार ना भेजे, क्योंकि तार आने का 99% मतलब यही था कि या तो मामा जी स्वर्ग सुधार गए, या फिर ताऊ जी आखिरी सांसें ले रहे हैं, या छोटू का एक्सीडेंट हो गया है। शादी के न्योते कम ही तार किए जाते थे। और टैक्सियां कहाँ थीं? हमने तो तांगा ही पक्की सड़क पे खटपट खटपट करते देखा, धनवान लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए और लुच्चे शोदे ईद दिवाली पे तमाशबीनी के लिए सालिम तांगा करते थे, और पैदल चलने वालों को यूं देखते जैसे सिकंदर ने पोरस को देखा होगा। बसंती तक तांगा चलाती थी, वरना शोले कहाँ चलती। तांगा अड्डा शहर के बीचों बीच होता था। मंटो ने तो अपने अफसाने नया कानून की हिरेन को तांगा लाइसेंस ना मिलने पे ऐसा बवाल मचाया कि आज तक नया कानून उर्दू लिटरेचर की MA क्लासों में पढ़ाया जाता है। शहर की गोरी कई बार किसी वीरान रेलवे स्टेशन पे खड़े तांगे वाले से फिल्मी इश्क भी कर बैठती थी, और तांगे वाला घोड़े को सड़ाक सड़ाक चाबुक मारता, उसे दुनिया से दूर ले जाता। और फिर वो मोरस टैक्सी, आदमी रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पे उतरे और मोरस की काली पीली टैक्सी में ना बैठे। 25 साल मोरस टैक्सी ने पिंडी पे राज किया, वरना तो पिंडी ही पाकिस्तान पे राज करता आया है। और फिर एम्बेसडर कार, हमने तो इसे फिल्मों में ही चलते देखा। सफ़ेद झक कुर्ते धोती और नेहरू टोपी में सफ़ेद एम्बेसडर से उतरते हुए खुर्राट नेता या फिर अमरेश पुरी जगावर चौधरी जैसे डॉन और स्मगलर, सब एम्बेसडर ही तो रखते थे। दूसरी कोई भी कार रखने वाले के बारे में कहा जाता खानदानी नहीं है, नया नया पैसा आया है ना। और फिर खत और टेलीग्राफ को ईमेल, तांगा अड्डे को प्लाजा, तांगे को टैक्सी और टैक्सी को नवाज शरीफ की पीली कार स्कीम खा गई। एम्बेसडर को भारत में आने वाली लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को मल्टीनेशनल ब्रांड्स की होड़ खा गई। कल खबर पढ़ी कि एम्बेसडर का ब्रांड भी किसी फ्रेंच ऑटोमेकर को कुछ लाख डॉलरों में बेच दिया गया, तो मुझे ये सब चीज़ें याद आ गईं जिन्हें अब मुझे अपने बच्चों को तस्वीर बता के बताना पड़ता है कि ऐसा होता था टेलीग्राम, ऐसी वर्दी थी डाक बाबू की, ये है तांगा, इसमें घोड़ा आगे जोता जाता था, और ये थी मोरस टैक्सी। आज बस एक टैक्सी बाकी है और वो भी इस्लामाबाद के लोक विरसा म्यूज़ियम में। क्या कोई तरीका है अपनी यादें OLX पे बेचने का?
वुजतुल्लाह खां की डायरी आप सुन रहे थे और अब खेल की खबरें आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। मेजबान भारत ने ब्लाइंड 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में कल पाकिस्तान को बेहद आसानी से 9 विकेट से मात दी। भारत के सामने जीत के लिए 198 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज प्रकाश जयरामैया के नाबाद 93 रनों की मदद से 17.4 ओवर में केवल 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रकाश जयरामैया और अजय कुमार रेड्डी के बीच पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 198 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए बदर मुनीर ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। भारत के मोहम्मद जफर इकबाल ने 33 रन देकर 2 और कीर्तन पटेल ने 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारत ने अपने खिताब को भी बचाए रखा। कल के फाइनल मुकाबले के बाद भारत के ब्लाइंड क्रिकेट संघ के महासचिव जॉन डेविड ने BBC को बताया कि कैसे प्रकाश ने फाइनल मुकाबले को बदला।
प्रकाश के बारे में तो बोला जाए तो वो तो काफी हार्ड हिटर है और काफी तेज खेलता है। गेम ऐसे जगह पे पलटा जब एक ओवर में 26 रन हमें मिले, एक ओवर में एक ओवर में 3 चौके मारे और 1 छक्का मारा था और 1 डबल रन दिया था और उसमें हमें 6 वाइड भी मिले थे, तो लगभग 26 रन एक ओवर मिले, तो वहां से हमारा पूरा आस्किंग रेट पूरा 8 के नीचे आ गया था।
उधर भारत और बांग्लादेश के बीच हैदराबाद में खेला जा रहा एकमात्र टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। भारत ने कल अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 159 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की और उसके बाद बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 459 रनों का लक्ष्य रखा और जब कल का खेल समाप्त हुआ तब उसका स्कोर 3 विकेट खोकर 103 रन था। भारत के आर अश्विन ने 34 रन देकर 2 तथा रविंद्र जडेजा ने भी 27 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। बांग्लादेश को आज 5वें और अंतिम दिन जीत के लिए 356 रन बनाने होंगे जबकि उसके 7 विकेट बाकी हैं। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज आज पहले तो शाकिब अल हसन, महमूदुल्ला और उसके बाद कप्तान मुशफिकुर रहीम को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच भारत के आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 250 विकेट पूरे करने में कामयाब रहे। उन्होंने 45 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल की और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेनिस लिली के 48 मैचों में 250 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा। और अब बात बैडमिंटन की। थाईलैंड मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल पुरुष एकल वर्ग का फाइनल तीसरी वरीयता हासिल इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो ने अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने गैर वरीयता हासिल थाईलैंड के कैलाफोन वांगचारोयन को 21-17, 21-11 से हराया। वहीं महिला एकल वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल थाईलैंड की बुसानान ओंगबांग रुंगफान ने चौथी वरीयता हासिल जापान की आया ओहोरी को 21-18, 21-16 से हराया। इस टूर्नामेंट में भारत के समीर वर्मा और सौरभ वर्मा ने पहले ही दिन अपने विरोधियों को वॉकओवर दे दिया जबकि आदित्य जोशी की चुनौती क्वार्टर फाइनल में ही टूट गई।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज इस कार्यक्रम में हमारे पास समाचारों के लिए वक्त नहीं है, शाम को दिनभर कार्यक्रम के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें और bbchindi.com पर आते रहें। नमस्कार।